हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। निमानी हाउस में सब अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि का परेशानी से बुरा हाल था। उसने आखिरकार हिम्मत करते हुए अपना फोन उठाया और फिर रोहान का नंबर डायल किया। रोहान और माही, जो दोनों केक खाकर वॉश बेसिन में अपने हाथ धोकर आ रहे थे, उन दोनों की बातों को उस कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया था। रोहान ने जल्दी से माथे पर बल डालते हुए कहा, एक मिनट मैडम जी, मैं देखता हूँ। इतनी रात को किसे खुजली हो रही है जो मुझे आपसे ढंग से बात भी नहीं करने दे रहा है? रोहान ने फोन पर फ्लैश होते नाम को देखा और फिर धीरे से कहा, आप लोग डिनर करिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अनाही ने जल्दी से कहा, प्लीज जल्दी आना, डिनर में लेट हो जाएगा वरना, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपके बिना ही खाना खा लूंगी। रोहान ने आगे बढ़कर एक हाथ से अनाही के गाल को छूते हुए कहा, हाँ मैडम जी, आप चिंता मत करिए, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। अनाही ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो जाकर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और रोहान भी अपना फोन लेकर थोड़ा साइड में आ गया। फोन उठाते ही रोहान ने हल्की स्माइल के साथ कहा, बोलिए डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ? इतनी रात को मुझे कैसे याद किया? और हाँ, मुझे आपको बताना था कि आपकी वजह से मेरा माइग्रेन काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। मैं कोई दवाई भी नहीं लेता हूँ, बस इसीलिए मैं ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहा था। रश्मि ने मुश्किल से अपना भारी गला छुपाने की कोशिश करते हुए थोड़ी धीमी आवाज में कहा, नहीं, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बस इसीलिए चाहती थी कि तुम एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। रश्मि चाहे लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद रोहान उसकी आवाज़ में आई उदासी को पहचान गया था। उसने धीरे से कहा, इसमें रोने वाली कौन सी बात थी? ऐसा लग रहा है आप बहुत देर तक गला फाड़ कर रोई हैं और उसके बाद मुझे कॉल किया है। ये फ़ोन तो आपके पास पहले भी था। अगर मुझ पर गुस्सा थी तो आप मुझे पहले कॉल कर सकती थी, मैं आ जाता। रश्मि ने मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल करते हुए कहा, तुम आते या ना आते, अब बताओ, मुझे तुम आ जाओगे ना मुझसे मिलने के लिए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतना बोलने के साथ ही रश्मि की आंखें भर आईं और रोहान भी और ज्यादा परेशान हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या अभी मिलना है आपको? रश्मि ने दर्द का घूंट भरते हुए कहा, हाँ, मुझे अभी मिलना था तुमसे। रोहान ने एक नज़र घुमाकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, जहाँ अनाही की नज़रें अभी भी उस पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रही हो। फिर वो गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ डिनर करके। अब सबको डिनर करते वक्त मैं अकेला छोड़कर नहीं आ सकता हूँ, और आपको तो पता है, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार करती है। बोलते बोलते रोहान की उदासी भरी आवाज़ खुशी में बदल गई थी, जिसे महसूस कर रश्मि के दिल को भी थोड़ा सुकून मिला। उसने धीरे से कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, और हाँ, घर पर नहीं, क्लिनिक पर ही आना है, मैं वहीं हूँ। रोहान ने हाँ बोलते हुए कॉल कट किया और फिर तेज़ कदमों से चलकर डाइनिंग टेबल के पास गया। अनाही की बगल वाली चेयर पर बैठते हुए धीरे से बोला, मैडम जी, मेरा इतना इंतज़ार भी मत करिए, चलो खाना शुरू करते हैं। निवेदिता अपने दोनों बेटों बहू को देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। राविया और अनंत के बीच ज़रूर खामोशी थी, क्योंकि उनके पास लड़ने के सिवा नॉर्मल बातें करने के लिए कुछ होता नहीं है। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। माही, जो बिस्तर लगा रही थी, उसने रोहान की तरफ देखा, जो कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। ये देखकर उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, रोहान जी, आपको कहीं जाना है? रोहान ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, हाँ, मुझे अभी जाना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके साथ रुकना चाहता था पर। अनाही ने जल्दी से कहा, इट्स ओके, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना और थोड़ा जल्दी आ जाना। रोहान उसके पास आया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप मेरा इंतज़ार मत करना और सो जाना। इतना बोलकर वो अनाही से अलग हुआ और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए प्यार से उसका माथा चूम लिया, जिसके साथ ही कुछ पल के लिए अनाही की आंखें सुकून से बंद हो गईं। और उसके बाद वो रोहान के हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, ठीक है, अभी आप जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिए। रोहान ने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़कर धीरे से अनाही के होठों को अपने होठों से छू लिया और फिर तेज कदमों से चलकर कमरे से बाहर चला गया। अनाही कुछ पल तक उसके होठों के एहसास के साथ वहीं खड़ी रही और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, एक झटके से अपनी आँखें खोल ली। उसने अपने लाल होते गालों पर हाथ रख लिया। वहीं रोहान की गाड़ी भी एक जोरदार ब्रेक के साथ रश्मि के क्लिनिक के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से चलता हुआ क्लिनिक के अंदर गया, जहां पहले से डॉक्टर रश्मि बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए उसका इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर बार बार परेशानी के भाव आ रहे थे और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। उसने जैसे ही गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी, वो तेज कदमों से चलती हुई दरवाजे तक आ गई। रोहान आते ही मुस्कुराया और फिर उन्हें गले लगाते हुए बोला, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या अपने दोस्त की ज्यादा याद आ रही है आपको? नमन का जिक्र सुनते ही रश्मि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे अब तो अपनी दोस्त की रोज़ याद आती है। तुम चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे पिछली बार कुछ टेस्ट किए थे जो अधूरे रह गए थे, मुझे वे करने हैं, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगी। ये सुनकर रोहान की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उसे लगा था डॉक्टर रश्मि ने उसे नॉर्मली बुलाया है, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करती हैं, लेकिन उसका कोई टेस्ट करना है, इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। वो उनके पीछे पीछे जाते हुए बोला, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको बताया तो था, जब से मेरी शादी हुई है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, ना मुझे शराब पीने की तलब लगती है, ना ही किसी को पीटने का दिल करता है, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं था। उसके बाद ये सब। डॉक्टर रश्मि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा रोना बढ़ गया है, क्या तुम शादी से पहले रोते थे? रोहान ने कुछ याद किया और फिर नामे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं पहले नहीं रोता था, अभी मुझे ज्यादा रोना आता है। डॉक्टर रश्मि को पता था कि ये सिम्टम गलत नहीं बल्कि सही है। रोहान अपने इमोशंस को फील कर पा रहा है, उन्हें एक्सप्रेस कर पा रहा है और ये कहीं से भी उसके बीमार होने की वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ना कोई झूठ तो बोलना था ताकि रोहान उनसे दवाइयां लेने के लिए तैयार हो जाए। रश्मि ने उसे चेयर पर बिठाया और फिर उसका टेस्ट करते हुए बोली, अब तुम शांत रहना थोड़ी देर। वहीं दूसरी तरफ रश्मि की बेटी रूही अभी भी उस चेयर पर बंधी हुई थी, लेकिन अब उसकी बंद पलकें धीरे धीरे खुल रही थी। उसके पास दो बॉडीगार्ड खड़े थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि उसकी आंखें खुल रही हैं, उनमें से एक दौड़ते हुए बाहर गया और हाल में बैठे एक इंसान से बोला, सर, उस लड़की को होश आ रहा है। सामने बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि रितेश का इकलौता बेटा पार्थ निमानी था, जिसकी उम्र करीब 26 साल है। वो सोफे पर बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसकी आंखें गहरी नीली थी, बिल्कुल समुद्र जैसी, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से उसके होंठ बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गए थे, जो उसके व्हाइट स्किन टोन पर बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के धीरे से हाँ में सिर हिलाया, जिसके साथ ही वो बॉडीगार्ड वहां से तेज कदमों से वापस अंदर चला गया।
उसके बाद पार्थ ने भी अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को वहीं ऐश ट्रे में फेंका और फिर उठकर तेज कदमों से चलता हुआ कमरे के अंदर गया।